एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं, शायद थोड़ा असहज भी करते हैं। थॉमस हॉब्स।
हाँ, थॉमस हॉब्स एक ऐसा नाम जिसने राजनीति, सत्ता और मानव स्वभाव, इन सब के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया कह सकते हैं।
बिल्कुल, 17वीं सदी के इंग्लैंड के विचारक, और जैसा आपने कहा, उनका जीवन, उनका दर्शन, ये सब उस दौर की जो उथल पुथल थी उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
जी, जब हम हॉब्स को पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ उनके विचार नहीं पढ़ रहे होते, हम उस युग की गूंज भी सुनते हैं। वो गृह युद्ध का माहौल, राजा की फांसी और लगातार एक व्यवस्था की तलाश।
हाँ, और उधर सबसे मशहूर काम लिव्याथन, वो आज भी मतलब डराता भी है और आकर्षित भी करता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हॉब्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और उनके विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
बिल्कुल, शुरुआत उनके दौर से करते हैं। कैसा था वो इंग्लैंड जहां हॉब्स सोच रहे थे, लिख रहे थे?
हाँ बताइए ना, वो माहौल कैसा था?
देखिए, वो इंग्लैंड के इतिहास का शायद सबसे अशांत दौर था। हॉब्स ने अपनी आंखों से अंग्रेजी गृह युद्ध देखा, 1642 से 51 तक।
गृह युद्ध मतलब देश अपने ही लोगों से लड़ रहा था।
हाँ बिल्कुल, समाज पूरी तरह बटा हुआ, हिंसा, अनिश्चितता, हर तरफ यही माहौल था। और सोचिए, उन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम को सरेआम फांसी पर चढ़ते देखा 1649 में।
ओहो, ये तो जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी एक अकल्पनीय घटना रही होगी, सत्ता की पूरी धारणा ही हिल गई होगी।
बिल्कुल, अराजकता और मौत का साया कह सकते हैं हर तरफ था। और एक दिलचस्प बात भी है, कहते हैं कि हॉब्स के जन्म से ही डर का साथ था।
हाँ, मैंने भी सुना है वो स्पेनिश आमाडा वाली कहानी।
जी, उनका जन्म 1588 में समय से पहले हुआ था, क्योंकि उनकी माँ स्पेनिश आमाडा मतलब स्पेन के जहाजी बेड़े के हमले की खबर से बहुत डर गई थी।
अच्छा।
हाँ, और हॉब्स ने बाद में मजाक में कहा भी था, डर और मैं जुड़वा पैदा हुए थे। पर ये सिर्फ मजाक नहीं था, शायद
शायद उनके पूरे दर्शन का सार इसी डर में छिपा है, हिंसक मौत का डर।
हाँ, और उससे बचने की एक तीव्र इच्छा, ये उनके विचारों का एक सेंट्रल पॉइंट है।
और इसी उथल पुथल के बीच दूसरी तरफ वैज्ञानिक क्रांति भी तो चल रही थी, गैलीलियो, डेकार्त।
हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। एक तरफ ये राजनीति का राजक था और दूसरी तरफ विज्ञान दुनिया को समझने के नए तर्कसंगत तरीके दे रहा था।
जैसे
जैसे गैलीलियो दिखा रहे थे कि ब्रह्मांड गणित के नियमों से चलता है, डेकार्त तर्क की शक्ति पर जोर दे रहे थे, तो हॉब्स इससे बहुत प्रभावित हुए।
उन्हें लगा कि राजनीति को भी विज्ञान की तरह समझा जा सकता है।
बिल्कुल, उन्हें लगा कि जैसे प्रकृति के नियम हैं, वैसे ही समाज और राजनीति के भी नियम खोजे जा सकते हैं। वो राजनीति का एक विज्ञान बनाना चाहते थे, एकदम ज्यामिति की तरह, निश्चित, तर्कसंगत।
तो इसका मतलब उन्होंने पारंपरिक दर्शन को जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता था उसे छोड़ दिया।
हाँ, ऑक्सफोर्ड की जो पारंपरिक बहसें थी धर्मशास्त्रीय टाइप की, उसमें उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। असली बौद्धिक मोड़ तब आया जब वो कैवेंडिश परिवार के ट्यूटर बने।
अच्छा
जी, इससे उन्हें ना सिर्फ आर्थिक स्थिरता मिली बल्कि एक बड़ी लाइब्रेरी मिली, यूरोप घूमने का मौका मिला और गैलीलियो जैसे विचारकों से मिलने का भी। 1636 में इटली में वो गैलीलियो से मिले थे।
और इन अनुभवों ने उनके विचारों को और पक्का किया होगा, वो भौतिकवादी सोच।
हाँ बिल्कुल, उनके भौतिकवादी और यांत्रिक दृष्टिकोण को इससे बल मिला। और फिर जैसा आपने कहा, गृह युद्ध का डर, उसी के चलते उन्हें पेरिस भागना पड़ा।
हाँ, 1640 के दशक में।
जी, जब इंग्लैंड में हालात बिगड़ने लगे और उनकी जो राजशाही समर्थक सहानुभूति थी उसके कारण उन्हें खतरा महसूस हुआ, तो वो पेरिस चले गए। 11 साल रहे वहां निर्वासन में।
और कमाल की बात यह है कि लिव्याथन उन्होंने वहीं लिखी, निर्वासन में।
हाँ, शायद उस दूरी से उन्हें इंग्लैंड की समस्याओं को और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली होगी।
अच्छा, तो अब आते हैं उनके मूल विचारों पर जिन्होंने इतना विवाद खड़ा किया। आपने भौतिकवाद का जिक्र किया, इसका क्या मतलब था उनके लिए आसान शब्दों में?
देखिए, हॉब्स का मानना था कि इस दुनिया में पदार्थ मतलब मैटर और गति मतलब मोशन, बस यही दो चीजें हैं असल में।
सब कुछ, हमारी सोच, भावनाएं, वो भी।
हाँ, सब कुछ, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इच्छाएं, ये सब हमारे शरीर और दिमाग में होने वाली भौतिक गतियों का ही नतीजा है। कोई आत्मा जैसी अमर अभौतिक चीज वो नहीं मानते थे।
ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा, खतरनाक भी।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे सीधे धर्म और पारंपरिक दर्शन को चुनौती दे रहा था।
और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो मानव स्वभाव वाला सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक अहंकार कि हम सब सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं लगता?
निराशावादी तो लगता है, पर हॉब्स के लिए ये कड़वी सच्चाई थी। उनका तर्क था कि हमारी सबसे बुनियादी प्रवृत्ति है आत्मसंरक्षण, खुद को बचाना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना।
मतलब हम हमेशा सुख खोजते हैं और दुख से बचते हैं।
हाँ, और उनके हिसाब से जब हम दया या परोपकार जैसा कुछ करते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे अपनी संतुष्टि या भविष्य में किसी लाभ की उम्मीद छिपी होती है। ये उनकी पूरी व्यवस्था का कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है,
और इसी स्वार्थी स्वभाव का नतीजा है उनकी वो भयानक कल्पना, प्राकृतिक अवस्था।
हाँ, प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर। ये हॉब्स का एक विचार प्रयोग है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं, सोचिए अगर कोई सरकार ना हो, कोई कानून ना हो, कोई पुलिस ना हो,
क्या होगा?
हॉब्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, हर किसी को जो चाहे करने की आजादी होगी, जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है।
तो नतीजा?
नतीजा निरंतर असुरक्षा, अविश्वास, संसाधनों के लिए लगातार लड़ाई। ये होगी सभी के विरुद्ध सभी का युद्ध, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल।
और ऐसी दुनिया में जीवन, उनकी वो मशहूर लाइन है ना?
बिल्कुल, उनके शब्दों में ऐसा जीवन होगा एकाकी, दीन, घृणित, पार्श्विक और क्षणभंगुर, सॉलिटरी, पुअर, नैस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट।
उफ, सुनने में ही भयानक लगता है।
हाँ, कोई उद्योग नहीं, कोई कला नहीं, कोई समाज नहीं, सिर्फ लगातार डर और हिंसक मौत का खतरा। ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि हॉब्स के मुताबिक कोई भी समझदार इंसान ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहेगा।
तो फिर इस भयानक स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर वो सामाजिक अनुबंध वाली बात आती है।
सही, हॉब्स कहते हैं कि अपनी बुद्धि और खुद को बचाने की प्रवृत्ति के कारण लोग ये समझते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलना ही उनके हित में है।
तो वो एक समझौता करते हैं।
हाँ, वे आपस में एक समझौता करते हैं, एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस समझौते में हर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी करने का अधिकार जिसमें हिंसा भी शामिल है, उसे छोड़ने के लिए राजी होता है, पर एक शर्त पर।
शर्त क्या?
शर्त ये कि बाकी सब भी ऐसा ही करें, अपनी आजादी छोड़ें।
लेकिन ये समझौता लागू कैसे होगा? अगर सब स्वार्थी हैं तो कोई भरोसा कैसे करेगा कि दूसरा अपना वादा निभाएगा? ये तो मुश्किल है।
बिल्कुल, और यही हॉब्स के तर्क का सबसे जरूरी और हाँ विवादास्पद हिस्सा है। वो कहते हैं कि सिर्फ वादा काफी नहीं है। उनका एक और मशहूर कथन है, अनुबंध बिना तलवार के केवल शब्द हैं।
Covenants without the sword are but words.
हाँ, मतलब समझौतों को लागू करने के लिए ताकत चाहिए, तलवार चाहिए। तो इस समझौते को लागू करने के लिए लोगों को अपनी सारी शक्ति और स्वतंत्रता एक केंद्रीय सत्ता को सौंपनी होगी, एक संप्रभु को, सॉवरन।
संप्रभु, ये कौन होगा? राजा?
हाँ, वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है जैसे राजा, या कुछ लोगों की सभा भी हो सकती है, लेकिन जरूरी यह है कि उसके पास निरपेक्ष शक्ति हो।
एब्सोल्यूट पावर।
निरपेक्ष शक्ति मतलब ऐसी शक्ति जिस पर कोई रोक टोक ना हो।
ये तो तानाशाही हुई। क्या ये अराजकता से भी बुरा नहीं है?
हॉब्स के नजरिए से नहीं। उनके लिए सबसे बड़ी बुराई अराजकता थी, गृह युद्ध था जिसमें जीवन ही सुरक्षित नहीं। उनका तर्क था कि संप्रभु की शक्ति पर अगर कोई सीमा लगाएंगे या उसे बांटेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा,
और फिर वापस वही प्राकृतिक अवस्था का खतरा।
हाँ, इसलिए शांति और सुरक्षा पक्की करने के लिए संप्रभु को कानून बनाने, उन्हें लागू करने, युद्ध और शांति का फैसला करने, यहाँ तक कि विचारों को नियंत्रित करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए।
विचारों को भी?
हाँ, ये कठोर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन हॉब्स मानते थे कि यह अराजकता से बचने की कीमत है। प्रजा का काम है आज्ञा मानना, बस एक शर्त है।
वो क्या?
जब तक संप्रभु उनकी रक्षा करने में सक्षम है, अगर वो फेल होता है तो अनुबंध खत्म।
अच्छा, लेकिन इसमें क्रांतिकारी क्या था? राजशाही तो पहले से थी, राजा की शक्ति भी बहुत थी।
क्रांतिकारी बात यह थी कि हॉब्स ने संप्रभु की सत्ता का आधार ईश्वर या परंपरा को नहीं माना, डिवाइन राइट को नहीं माना। उन्होंने इसका आधार बनाया शासितों की तर्कसंगत सहमति को, रैशनल कंसेंट।
मतलब लोग खुद चुनते हैं ये व्यवस्था भले ही डर से।
हाँ, लोग अपनी सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से भले ही डर से प्रेरित होकर ये व्यवस्था चुनते हैं। ये राजनीति को धर्म से अलग करने की दिशा में, उसे एक सेक्युलर तर्कसंगत आधार देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। भले ही उनका नतीजा निरंकुशता था, पर उनका तरीका, उनका मेथड, वो आधुनिक राजनीतिक दर्शन की नींव रखता है।
और इन विचारों को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। लेवियाथन तो सबसे प्रसिद्ध है ही, और कौन सी अहम किताबें हैं उनकी?
लेवियाथन 1651 तो है ही उनकी मास्टरपीस, जिसमें ये सारे तर्क बहुत डिटेल में हैं। राज्य को एक विशालकाय कृत्रिम मानव या वो बाइबल का समुद्री राक्षस लेवियाथान बताया है जो व्यवस्था बनाए रखता है।
हाँ।
इससे पहले उन्होंने द एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 और डी सीवे ऑन द सिटीजन 1642 लिखी थी। इनमें इन विचारों की शुरुआती रूपरेखा मिलती है। बाद में डी कॉर्पोरे ऑन बॉडी 1655 और डी होमाइन ऑन मैन 1658 भी लिखी, जो उनके बड़े फिलोसॉफिकल सिस्टम का हिस्सा थी।
और एक किताब अंग्रेजी गृह युद्ध पर भी थी।
हाँ, बेहमुत, वो उनकी मृत्यु के बाद छपी।
अगर हम उनकी तुलना दूसरे बड़े विचारकों से करें जैसे जॉन लॉक या रूसो से, तो मुख्य अंतर कहाँ दिखता है?
जॉन लॉक जो हॉब्स के बाद आए, वो मानव स्वभाव को थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं आशावादी नजरिए से देखते थे। लॉक मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ अधिकार होते हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के, नेचुरल राइट्स।
और सरकार का काम उन अधिकारों की रक्षा करना है।
बिल्कुल, इसलिए लॉक सीमित सरकार के पक्ष में थे, लिमिटेड गवर्नमेंट, जबकि हॉब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था में कोई अधिकार नहीं होते, सिर्फ शक्ति होती है। अधिकार तो संप्रभु बनाता है।
और रूसो?
रूसो तो और भी अलग थे। उन्होंने तो प्राकृतिक अवस्था को लगभग अच्छा माना, जिसे समाज ने बिगाड़ दिया। हॉब्स के लिए ये बिल्कुल उल्टा था। प्राकृतिक अवस्था भयानक थी और समाज, मतलब एक शक्तिशाली राज्य ही उसे सुधार सकता था।
तो जाहिर है उनके विचारों की आलोचना भी बहुत हुई होगी उस समय।
हाँ, बहुत हुई। जॉन लॉक तो उनके सबसे बड़े आलोचक थे ही। तब से लेकर आज तक आलोचक यही कहते आए हैं कि हॉब्स का जो मानव स्वभाव का चित्रण है वो एकांगी है, जरूरत से ज्यादा निराशावादी है।
क्या मनुष्य सिर्फ स्वार्थी ही है? सहयोग, सहानुभूति, ये सब नहीं है?
यही सवाल आलोचक उठाते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल उनके समाधान पर है, क्या निरपेक्ष सत्ता, एब्सोल्यूट पावर, वो समस्या से भी बड़ा खतरा नहीं है? इतिहास तो यही बताता है कि असीमित शक्ति अक्सर अत्याचार को जन्म देती है।
और उन पर नास्तिकता के आरोप भी लगे।
हाँ, वो तो लगते ही थे, क्योंकि उनका जो भौतिकवादी दर्शन था उसमें ईश्वर या आत्मा के लिए कोई सीधी जगह नहीं दिखती थी, और 17वीं सदी में यह बहुत खतरनाक आरोप था।
ये भी दिलचस्प है कि जो व्यक्ति निरपेक्ष राजशाही का इतना जबरदस्त समर्थक था, वो खुद क्रॉमवेल के गणराज्य में भी रहा और बाद में जब राजशाही वापस आई उसमें भी रहा।
हाँ, ये दिखाता है कि शायद उनके लिए व्यवस्था का रूप उतना जरूरी नहीं था, राजशाही हो या गणराज्य, जरूरी था व्यवस्था का होना। कोई भी ऐसी सरकार जो शांति और सुरक्षा कायम रख सके, शायद उन्हें उससे दिक्कत नहीं थी।
बाद में राजा चार्ल्स द्वितीय ने उन्हें पेंशन भी दी।
जी, चार्ल्स द्वितीय को हॉब्स ने पेरिस में गणित पढ़ाया था, तो राजा ने पेंशन तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अब आप राजनीति और धर्म पर कुछ और नहीं छापेंगे। उनके विचार उस समय के लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक माने जाते थे।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू भी हैं। मैंने सुना वो गाते भी थे जोर जोर से।
हाँ, ये मजेदार है। वो 91 साल जिए, उस जमाने के हिसाब से बहुत लंबी उम्र, और वो इसका क्रेडिट अपनी रूटीन को देते थे, जिसमें लंबी सैर करना और हाँ, अपने कमरे में जोर जोर से गाना शामिल था।
अच्छा, क्यों गाते थे?
उनका मानना था कि इससे उनके फेफड़े मजबूत होते हैं।
कमाल है। और ये भी सुना कि वो अंधेरे से डरते थे।
हाँ, ये भी एक विरोधाभास है। जो विचारक मानव स्वभाव के इतने अंधेरे पक्ष पर लिख रहा है, वो खुद अंधेरे से, शायद भूतों से डरता था। रात में बत्ती जला के और बिस्तर के पास तलवार रख के सोते थे।
तलवार रख के?
जी हाँ। और एक और बात, 80 की उम्र पार करने के बाद उन्होंने होमर के इलियड और ओडिसी का ग्रीक से अंग्रेजी में अनुवाद किया, और वो काफी लोकप्रिय भी हुआ।
वाकई, 80 के बाद? और गणित में भी उनकी रुचि थी, पर शायद थोड़े जिद्दी थे इस मामले में।
हाँ, एक गणितज्ञ थे जॉन वॉलेस, उनके साथ हॉब्स का वृत्त को वर्ग करने यानी स्क्वेरिंग द सर्कल की एक असंभव समस्या पर लंबा झगड़ा चला। गणितीय रूप से हॉब्स गलत थे, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। दिखाता है कि वो अपने विचारों को लेकर कितने पक्के थे, शायद कभी कभी हठधर्मी भी।
तो कुल मिलाकर हॉब्स का हमारे लिए क्या महत्व है आज? क्यों पढ़े हम उन्हें? क्या सीख सकते हैं?
देखिए, हॉब्स हमें कुछ बहुत बुनियादी और हाँ, असहज सवालों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा, इनके बीच सही संतुलन क्या हो?
व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति जरूरी है और वो शक्ति आती कहाँ से है?
बिल्कुल, उनका मुख्य तर्क था कि हिंसक मौत का डर हमारी सबसे गहरी प्रेरणा है, और इसी डर के कारण हम अपनी आज़ादी एक शक्तिशाली सत्ता को सौंपने को तैयार हो जाते हैं। उनका वो कथन याद है, प्रजा का संप्रभु के प्रति दायित्व।
जब तक ये समझा जाता है, जब तक वो शक्ति बनी रहती है जिसके द्वारा वो उनकी रक्षा करने में सक्षम है।
हाँ, मतलब सुरक्षा सबसे ऊपर।
जी, सुरक्षा ही सर्वोपरि है।
तो भले ही हम उनके उस निरंकुश समाधान से सहमत ना हों आज, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए और जिस तरह तर्क के आधार पर राजनीति को समझने की कोशिश की, उसने आधुनिक सोच की दिशा ही बदल दी।
बिल्कुल।
उन्होंने राजनीति को ईश्वर की मर्जी से हटाकर मानवीय तर्क और स्वार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया। उन्हें राजनीतिक यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म का पितामह माना जाता है। ये सोच कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हों या घरेलू राजनीति, शक्ति और स्वार्थ ही मुख्य चीजें होती हैं।
और ये चीजें आज भी उतनी प्रासंगिक है।
हाँ बिल्कुल, आज भी जब हम आतंकवाद से लड़ने के कानूनों पर बात करते हैं, या सरकारी निगरानी पर, या इमरजेंसी में राज्य की शक्तियों पर बहस करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हॉब्स के उठाए उसी सवाल से जूझ रहे होते हैं
कि सुरक्षा के लिए हम कितनी स्वतंत्रता कुर्बान करने को तैयार हैं।
बिल्कुल, वही शाश्वत सवाल।
तो श्रोताओं के लिए सोचने का बिंदु शायद यही है, क्या मानव स्वभाव वाकई उतना ही स्वार्थी और डरा हुआ है जैसा हॉब्स ने बताया था, या ये एक अतिशयोक्ति है? और आज के दुनिया में जहां खतरे नए नए रूप ले चुके हैं, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच वो सही अनुबंध, वो सही संतुलन क्या होना चाहिए? हॉब्स का लेवियाथन आज भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्त्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।